तेज की आंखों में खून उतर आया था। अभी तक तेरे साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन अब तू मेरी हैवानियत देखेगी। डर से इनाया पूरी तरह कांप गई। तेज ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया और उसके होंठों को जकड़कर वाइल्डली किस एंड बाइट करने लगा। इनाया की चीखें उसके गले में घुटकर रह गई। वो बुरी तरह तड़प उठी, उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी, उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। भय से उसका पूरा वजूद कांप उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। तेज अग्रेसिव हो गया था। इनाया के नाजुक होंठों का बुरा हाल करने के बाद वो उसकी गर्दन को सक और बाइट करने लगा। अब भी उसने इनाया के दोनों हाथों को ऊपर करके टाइटली पकड़ा हुआ था। दर्द से इनाया की चीखें उस बंद बाथरूम में गूंज रही थीं। इनाया जब सारी कोशिश करके हार गई तो उसने तेज के कंधे पर दांत कड़ा दिए, पूरी जान लगाकर उसके कंधे को काट लिया। दर्द से छटपटाने हुए तेज उसे छोड़कर पीछे हट गया। इनाया ने तुरंत उसे वॉशबेसन की तरफ धक्का दिया और खुद गेट खोलकर बाहर निकल गई। बाहर से दरवाज़ा बंद किया, अपना पर्स उठाया, कपड़े ठीक किए और बदहवास सी दौड़ती हुई वहां से चली गई। उसके कदम सीधे ऑफिस से बाहर निकलकर रुके। वो बुरी तरह हांफ रही थी, पूरा शरीर पसीने से भीगा था और अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था। इनाया ने टैक्सी ली और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात सच सच बताकर तेज के खिलाफ FIR लिखवाई। उसकी हालत इस बात का सबूत था कि उसका कहा एक एक शब्द सच है। बिखरे बाल, सूजे जगह जगह से कटे हुए होंठ, गर्दन पर मौजूद दांतों के निशान, घबराया हुआ वजूद और चेहरे पर खौफ। तेज धनराज का नाम सुनकर इंस्पेक्टर एक पल को रुका जरूर, लेकिन फिर उसने FIR लिख ली। इनाया को समझा बुझाकर घर भेज दिया और सीधे फोन मिलाया मिस्टर धनराज को, सारी कहानी उन्हें सुना दी। कायरव, उस दिन मैंने बाथरूम का डोर लॉक किया था, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, लेकिन फिर भी वो अंदर घुस गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। पता है उस वक्त मुझे कैसा लग रहा था? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना खुद को बेबस और लाचार कभी महसूस नहीं किया था। मुझे अपने शरीर से घिन आ रही थी, इतना डर गई थी मैं। उसे खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन उसकी ताकत के आगे मैं कमज़ोर पड़ रही थी। उस वक्त वो मुझे हैवान लग रहा था जो मुझे नोच कर खा जाना चाहता था, और मैं खुद को उससे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस पल दिल में ख्याल आया कि उससे अच्छा तो बप्पा मुझे मार देते, बदसूरत बना देते, कम से कम ऐसे किसी बिगड़े अमीरजादे की हवस का शिकार तो नहीं बनना पड़ता मुझे। मैं बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागी थी और कानून का दरवाज़ा खटखटाया कि वहां से मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ? इनाया व्यंग्य से मुस्कुराई। मैं घर चली गई, पैसे नहीं थे, और जिस हाल में मैं घर पहुंची, आई बाबा दोनों मुझसे सवाल करने लगे। मैंने उन्हें सब सच बताया, लेकिन दोनों में से किसी ने मेरी बात का विश्वास तक नहीं किया। बाबा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया, बहुत चिल्लाए, हाथ भी उठाया। मैं गलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल दिया। कहने लगे पढ़ाई और काम के बहाने बाहर जाकर ये सब करती हूँ, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और उसके बाद मुझे एक रूम में बंद कर दिया। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे उनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। पूरा दिन मैं बिना खाने पीने के उस रूम में बंद रही। शाम को इंस्पेक्टर घर आया और मुझे कहा कि मैं केस वापस ले लूं। मैंने मना किया तो उसने मेरी बात मिस्टर धनराज से करवाई। उन्होंने मुझे समझाया कि इस केस से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, लेकिन तेज धनराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। वो उनका इकलौता बेटा है, वो कुछ भी करके उसे बचा लेंगे, और इन सब में ज़िंदगी मेरी तबाह होगी। तेज छोड़ेगा नहीं मुझे। अगर मैंने उनकी बात मान कर केस वापस ले लिया तो वो तेज को मुझसे दूर रखेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट से भी मुझे फ्री कर देंगे। इंस्पेक्टर ने मुझे और आई बाबा को बहुत समझाया, और जब 1,00,000 रुपए देने की बात कही तो मेरे बाबा फौरन मान गए। उनकी नज़रों में मेरी इज्जत की कीमत 1,00,000 थी, ये जानकर बहुत अफसोस हुआ था मुझे। लेकिन मैं जानती थी कि उन्हें मुझसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। मैं तब भी नहीं मानती, लेकिन आई बाबा को तो वो पैसे चाहिए थे। उन्होंने मुझे मजबूर किया और मुझे अपना केस वापस लेना पड़ा। उस दिन मुझे पता था कि कानून की देवी की आंखों में सच में पट्टी बंधी है, और न्याय पैसों वालों के हाथ का खिलौना है। जिसके पास पावर है, लॉ भी उसके तलवे चाटता है, और मुझ जैसे गरीब लोग इस सिस्टम का शिकार बनते हैं, क्योंकि हमारे पास सच्चाई के अलावा कुछ नहीं होता, और सच की औकात यहाँ इस दुनिया में बस इतनी है कि वो कागज़ों में दफन होकर फाइलों की धूल खाता है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग भी अब आंखों से नहीं, पैसों की चमक से देखते हैं। मैंने उस दिन जाना कि बेगुनाही भी यहाँ एक गुनाह है, अगर तुम्हारे पास उसे साबित करने के लिए दौलत नहीं है। इनाया अपनी बेबसी पर मुस्कुराई, दर्द भरी आह उसके होंठों से आज़ाद हुई। मुझे लगा था कि वो मैटर वहीं क्लोज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उस हादसे के बाद काफ़ी टाइम तक तो मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया, लेकिन जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मुझे जॉब करने की परमिशन मिल गई। मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं जहाँ जाती वहाँ मुझसे पहले मेरे बारे में झूठी खबरें पहुँच जाती। वो आदमी जिसने मेरा रेप करने की कोशिश की, उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसे रिझाने की कोशिश की। पहले दिन से मैं उसके पीछे पड़ी थी, मैंने उसके साथ अपने जिस्म का सौदा किया था। मैंने उसे ये डील ऑफर की कि अगर मुझे प्रमोशन दिया तो मैं उसकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी करूँगी। वो मान गया और मैं उसके एम्प्लॉई से उसकी रखेल बन गई, लेकिन मेरी डिमांड्स बढ़ने लगी, जिससे परेशान होकर उसने मुझसे रिश्ता ख़त्म किया और जॉब से निकाला। तो मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उस पर केस करके उसे और उसके परिवार को बदनाम कर दूंगी। और जब तब भी वो नहीं माना तो मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेन की, लेकिन जैसे ही मुझे पैसे मिले मैंने कंप्लेन वापस ले ली। उसने बहुत ही आसानी से सबको अपनी इस झूठी कहानी पर विश्वास दिला दिया, खुद को इनोसेंट प्रूव कर लिया और मुझे एक गोल्ड डिगर कैरेक्टरलेस लड़की बना दिया, जो पैसों और कामयाबी के लिए खुद को भी बेचने से पीछे नहीं रहती। उसने मुझे सिर्फ बदनाम ही नहीं किया, मेरा करियर ख़त्म कर दिया, क्योंकि इन सब के बाद कोई भी कंपनी मुझ जैसी लड़की को अपने वहाँ काम पर नहीं रखना चाहता था। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत जगह भटकी, लेकिन कहीं भी मुझे जॉब नहीं मिली। लोग मुझे ऐसे देखते जैसे मैंने कितना बड़ा गुनाह किया हो। मैं उनकी आँखों और बिहेवियर में अपने लेखन और नफ़रत देखकर तड़पती थी। दम घुटता था मेरा, दिल चाहता कि मर जाऊं, लेकिन मौत भी नहीं आती थी। वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर था। कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, पैसे नहीं थे, आई बाबा के ताने गालियां सब सुनती थी, ह्यूमिलिएशन सहती थी, पल पल जिंदगी के लिए लड़ती थी। हर तरह से बस निराशा मिल रही थी। खुद पर से मेरा विश्वास डगमगाने लगा था। अगर तब मानव ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं अपनी जान दे देती। इस पूरी इंसिडेंट में वो हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ा रहा, एक पल के लिए भी मुझ पर से उसका विश्वास नहीं डगमगाया था। उसके बाद मैंने छोटी मोटी जॉब करनी शुरू की, लेकिन तेज जैसे लोग हर जगह मिल जाते थे। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था, किसी तरह जिंदगी की गाड़ी घसीट रही थी, लेकिन इन सब में मेरा सपना टूट गया था। लेकिन फिर तुम आए मेरी जिंदगी में और मेरी बिखरी जिंदगी को संवार दिया। मैं खुश थी तुम्हारे साथ, तुम्हारे वजह से मेरे सपने ने फिर से सांस लेना शुरू किया और मन में उम्मीद जागी कि अब मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी, मैं वो कर पाऊंगी जो मुझे हमेशा से करना था।
लेकिन आज तुम मुझे फिर उस शख्स के सामने ले गए जिसने मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद कर दिया था, जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, जिसने मुझे वो ज़ख्म दिए जो वक्त के साथ नासूर बन गए, जिसका वजूद मुझे मेरी कमज़ोरी, बेबसी और मजबूरियों का एहसास दिलाता है। इनाया की नाराज़गी भरी निगाहें कायरव की तरफ उठीं। उन आँखों दर्द था, शिकायत थी, जिसे महसूस करते हुए कायरव तड़प उठा। उसने बस सुना था, तब उसका मन गुस्से से भर गया। इनाया ने तो सब सहा था, वो सोच भी नहीं सकता था कि क्या बीती होगी उस पर, कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने वो सब। कायरव ने इनाया की बाँह पकड़ी और खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिए। कांपते होठों से बस चंद शब्द निकले, आई एम सॉरी, टू बी कंटिन्यूड।